ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद 28वां अध्याय श्लोक संख्या 35 36 पाठ करके श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर भाव है क्योंकि इस श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद जो है ये चार प्रकरण से युक्त है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम लोग तीन प्रकरण सुन चुके हैं, धर्म, अर्थ और काम का प्रकरण। अभी मोक्ष का प्रकरण शुरू हुआ 23 अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक ये मोक्ष प्रकरण चलेगा। मोक्ष प्रकरण में वैराग्य की प्रधानता है। वैराग्य जीवन में नहीं है तो उसको भक्ति जीवन उसका खोखला है, कुछ नहीं है। इसलिए ब्रजवास उसी की सफलता मिलेगी जब वैराग्य पूर्वक भगवान भागवत भजन करेंगे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। महाप्रभु दो कारण के लिए आए, वैराग्य की शिक्षा और भक्ति योग की शिक्षा। तो वैराग्य शिक्षा देखिए कितना सुंदर, हम लोग घर गृहस्थी है, भक्ति में गृहस्थ विरक्त का कोई अंतर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जिसका राग चला गया संसार से, राग विगत राग जस्मात इति विराग तस्य भावयति वैराग्य। संस्कृत के उत्पत्ति इस प्रकार का है, वैराग्य शब्द जिससे राग चला गया, आसक्ति चली गई, तो उसको विराग कहते हैं, तस्य भावयति वैराग्य। तो वैराग्य के सब चैतन्य महाप्रभु के जितनी पार्षद हुए सब वैराग्य के मूर्त प्रतीक थे। महाप्रभु वैराग्य प्रिय प्रधान, मतलब जिसके अंदर वैराग्य महाप्रभु देखते थे वैरागी है, तो महाप्रभु बहुत पसंद आता था, बहुत पसंद करते थे। महाप्रभु प्रीतहन वैष्णवेर वैराग्य प्रधान, तहा देखे प्रीतहन गौर भगवान। जार जिसके अंदर वैराग्य के भाव है तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। महाप्रभु भक्तेर वैराग्य प्रधान, तहा देखे प्रीतहन गौर भगवान। इसलिए वैराग्य नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कम से कम ये तो भाव में आना चाहिए। जो भी कम से कम वस्तु से जीवन जीने की आदत बनाना चाहिए। ज्यादा बटोरने लगेंगे तो प्रकृति उसका ये करेगा, शासन करेगा, उससे प्रकृति शासन करेगी। प्रकृति उसको देखेगा कि हैं किस प्रकार से समाज संसार से वस्तु की संग्रह किया, इसका विनिमय कुछ इन्होंने क्या किया, मैंने इतना लाखों टन अन्न सेवन किया, इसके विनिमय में क्या दिया संसार के लिए, समाज के लिए। जैसे महाप्रभु पार्षद हुए रूप गोस्वामी, सनातन षट गोस्वामी, इन्होंने कुछ लिया नहीं, संसार के लिए बहुत कुछ दिया। और क्या खाते थे, पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते थे, सूखा चना रोटी चावा कर भजन करते थे। यह वैराग्य जीवन। तो कम से कम जो हम लोग राग में हैं, हम लोग को अनुराग में पहुंचना है। अनुराग मतलब प्रेम स्तर तक पहुंचना है। तो बीच की जो रास्ता है इसको वैराग्य कहते हैं। राग में है ये संसार में राग है, राग मतलब ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, संसार सारी वस्तु मुझे चाहिए। हाँ, तो इससे आसक्ति की हटा कर भगवान तक पहुँचना है। और अगर इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हो पाए तो बहुत बड़ा घाटा है, ये मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा नहीं। दो कितना करोड़ जीवन जोने के बाद मनुष्य भी प्राप्त होता है, शायद 2 करोड़ जोन मतलब है नहीं से वर्ष के हिसाब से सब जोनियों के आयु को लेकर, ऐसे सब जोनियों के आयु को लेकर 2 करोड़ के बाद, जिसे मनुष्य जन्म चला गया फिर 2 करोड़ के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा, वर्ष के बाद, वर्ष के बाद। हाँ, तो इसीलिए खूब सावधान होकर, नहीं एक क्षण व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। हर क्षण जैसे प्रभु का नाम, अगर किसी से बात भी करे तो हरि कृष्ण महामंत्र ध्यान होना चाहिए कि नहीं, किसी देख रहे व्यक्ति को देख रहे हम, किंतु हमारा ध्यान कहाँ है? नाम में। जब किसी को देख रहे तब तो समय प्रभु का नाम स्मरण होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर जीवन जीने शुरू करे, प्रारंभ करे, अभ्यास करे तो ये हो जाएगा। अरे यही जीवन है। तो ये वैराग्य की शिक्षा देने के लिए महाप्रभु आए, महाप्रभु पार्षदगण आए, तो हम लोग सुनेंगे नादाहरी सरकार ठाकुर कितना महाप्रभु प्रिय थे। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी श्रीमद्भागवतम में अपना लेखने में क्या लिखते देखते हैं। तत्र चंद्रवसा नाम ताम्रपर्णे बटोदका, तत्पुण्यसलिलैः नित्यमुभयत्रयात्मनो मृजन्। कन्दाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पपर्णैस्त्रिणोदकैः वर्तमानः सनिर्गात्रा कर्षणं तपया स्थितः। तत्र चंद्रवसा नाम ताम्रपर्णिबटोदका, तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् उभयत्रयात्मनो मृजन्। कन्दाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पपर्णैस्त्रिणोदकैः वर्तमानः सनिर्गात्रा कर्षणं तपया स्थितः। माता है, माता है। तपया स्थितः तत्र चंद्रवसा नाम ताम्रपर्णे बटोदका, तत्पुण्यसलिलैः नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन्। कन्दाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पपर्णैस्त्रिणोदकैः वर्तमानसनिर्गात्र कर्षणं तपया स्थितः। तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णिबटोदका, तत्पुन्नासलिलयनितं मृजन् कन्दास्तिभिर्मूलफलै पुष्पपर्णस्त्रिणोदकै वर्तमानसमयगात्र कर्षणं तपया स्थितः तत्र वहाँ चंद्रवसा चंद्रवसा नदी नाम नामक ताम्रपर्णी नदी बटोदका बटोदका नदी तत् उन नदियों के पुण्य पवित्र सलिलई जल से नित्यम नित्य प्रति उभयत्र दोनों प्रकार से आत्मनः अपने आप को मृजन नहाकर कंद मूल अस्टिभि तथा बीजों से मूल जड़े फलई तथा फूलों से पुष्प फूल पर्णय तथा पत्तों से तृण घास उदकई तथा जल से वर्तमान निर्वाह करते हुए शनै धीरे धीरे गात्र अपना शरीर कर्षणम दुबला करके तपह तपस्या आस्थितः किया। शिल प्रभुपाद के तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य। कुलाचल प्रांत में चंद्रवसा ताम्रपर्णी तथा बटोदका नाम की तीन नदियां थी। राजा मलयध्वज नित्य ही इन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता था। इस प्रकार उसने बाहर तथा अंदर से अपने को पवित्र कर लिया था। वो स्नान करता और कंद बीज पत्तियां फूल जड़े फल तथा घास खाता तथा जल पीता था। इस प्रकार वो कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वो अत्यंत कृशकाय हो गया। काय मतलब शरीर, कृश शरीर हो गया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यह हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए मनुष्य को अपने शरीर भार पर नियंत्रण रखना चाहिए। शरीर भार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि कोई अत्यधिक मोटा हो जाए तो समझना चाहिए कि वो आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने मोटे शिष्य को कटु आलोचना किया करते थे। भाव यह है कि जिसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा हो उसे अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। भक्त लोग पहले जंगलों या पहाड़ों में तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, किंतु आजकल ऐसी कठिन तपस्या संभव नहीं है। मनुष्य को केवल इतना प्रसाद खाना चाहिए जो आवश्यकता से अधिक ना हो। वैष्णव पंचांग के अनुसार उपवास के अनेक दिन हैं, यथा एकादशी तथा भगवान एवं भक्तों के आविर्भाव एवं तिर्भाव के दिन। ये सारे उपवास शरीर की चर्बी को कम करने के उद्देश्य से है, जिससे भक्त न तो आवश्यकता से अधिक सोए और न निष्क्रिय तथा आलसी बने। अधिक खाने से अधिक नींद आएगी। यह मनुष्य जीवन तप के लिए मिला है। और तप का अर्थ है संभोग, आहार इत्यादि पर नियंत्रण। इससे आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय बचेगा, आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय बचेगा और मनुष्य अपने को बाहर तथा भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार से शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या, कम भोजन करना चाहिए। जिसका शरीर दुखला पतला वो उतना ही भोजन करे जैसे शरीर चल जाए। शरीर में भजन करने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करे, उससे अधिक स्वीकार ना करे। श्रील प्रभुपाद जी एक अपना गुरु महाराज जी की एक बातें भी सुनाए कि जो उनका मोटे शिष्य होते थे तो उन पर आरोप लगाते वैसे नहीं खाना, हाँ कम खाकर भजन करना। हाँ मनुष्य को इतना है, केवल इतना ही प्रसाद खाना चाहिए जो आवश्यकता से अधिक ना हो। वैष्णव पंचांग के अनुसार उपवास करना चाहिए। हाँ उपवास के दिन पूरा फीस्ट नहीं खाना चाहिए, जितना से काम चल जाए। 12 बजे तक फास्टिंग, उसके बाद कम पानी जल कम मात्रा में पीकर, अगर भूखे भोजन नहीं हो पा रहे थोड़ा पानी पी सकते। उस दिन फीस्ट नहीं खाना चाहिए, कम से कम भोजन से जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो वर्तमान समय तो उपवास के दिन बेसिक कर ज़्यादा करके प्रसाद पाया जाते हैं, ये उचित नहीं है। मन में एक लालसा होनी चाहिए कि मुझे भजन करना है। जब तक लालसा जागृत नहीं होगा तब तक भजन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं वहाँ जाएंगे तो मेरा समय खराब होगा। किसी ने भोजन के लिए बुलाया, किसी बहाने से टाल देना चाहिए। अगर जितना जगत में प्रीति रखेंगे उतना भजन घटेगा। जगत प्रीति भजन में नहीं चलता है, वो क्या बोलेगा इस पर कभी चिंतन नहीं है। मेरा भजन नष्ट हो, भजन चला जाएगा। हाँ इस प्रकार से चिंतन अपने हृदय से एक बेकुलता होनी चाहिए। जब तक तड़पन नहीं आएगा, भजन की लालसा नहीं आएगी, तब तक भजन बनेगा ही नहीं। हाँ क्योंकि जन्म जन्मांतर से विषय रस सेवन किया, और जब तक विषय रस का सेवन करते रहेंगे तब तक चित्तवृत्ति विषयाकार बन जाएगा। चित्तवृत्ति जो है वो विषयाकार बन जाएगा, तपस्या नहीं हो पाएगा। उसका मन हमेशा मलिन रहेगा, उसका मन हमेशा के लिए मलिन मन रहेगा। मलिन मन न है कृष्णेर स्मरण, इसीलिए हमेशा चित्तवृत्ति में कृष्णाकार होना चाहिए, कृष्ण सत का चिंतन होना चाहिए। और सत का चिंतन कैसे होगा, सत्संग नियमित रूप से सत्संग करना चाहिए। सत्संग से और सत्संग प्राप्त होता है भगवत कृपा से। भगवान से सामने खड़े होकर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे संतों का संग दे दीजिए। हाँ ध्रुव जी ने तो यही मांगा। हाँ जो भूरी श्रवा जो आज महान संत हुए सब प्रभु के संतों का संग मांगा। हाँ संतों के संग से प्राप्त क्या लाभ होगा ना, हमारा मोह जो भागवत प्राप्ति में जो बाधा है वो बाधा कट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए तपस्या जी क्या करना चाहिए ना, सत्संग प्राप्त होता है भगवत कृपा से, और सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है। सत्संग विनो विवेक ना होए, विवेक अगर विवेक लाना है तो सत्संग नियमित रूप से टेप से हो, अगर साक्षात सुनने का सौभाग्य मिले तो वहाँ भी जाकर श्रवण करे। हाँ कम से कम रोज संतों का संग होना चाहिए, क्योंकि उसका रोम से एक रे निकालते हैं। जिस भजनशील महात्मा है, जो नामनिष्ठ महात्मा है, इसका जीवा पर सब समय ऐसे में संत महात्मा को दर्शन किया कि जीवा वो बंद करने पर भी नाम रोक नहीं पा रहे। हाँ ऐसे ऐसे क्योंकि इतना अभ्यास किया नाम का, जिन ऐसे संतों का संग मिले तो करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें हे प्रभु ऐसे नामनिष्ठ संतों का मुझे प्राप्त करा दीजिए, संग मतलब दर्शन करा दीजिए। इनके संग से आपको उनके रे मिलेगा, उनका एक शक्ति मिलेगी, उससे आपका भजन शुरू हो जाएगा। हाँ हम लोग भजन शुरू नहीं होता क्यों, कि हम संतों का संग, संतों का हम साधारण समझते हैं। हाँ संत तो साधन है, संत तो भगवान जो चीज दे नहीं सकते भक्त तो दे देते हैं। हाँ भक्त जैसे गैया जो है, गैया के पीछे पीछे बछड़ा चलती है, गैया बछड़ा के अधीन है, बछड़ा गैया के अधीन नहीं है। भले भक्त तो भगवान से भजन करते हैं किंतु भक्त तो हमेशा भगवान के बहुत प्यारे होते हैं। जैसे भक्तमाल जो है, भक्तमाल ग्रंथ नाभाजी ने लिखे, तो भक्तमाल ग्रंथ जब लिखे तो सब पहले श्रोता बने भगवान नारायण। नारायण कहे मुझे पहले सुनाओ। हाँ तो इसलिए भक्त चरित्र जब भी सुनने को मिले घर में, कभी कभी रोज संत का चरित्र पढ़ना चाहिए कि इसमें कैसे उन्होंने साधन किया, कैसे भजन किया, कैसे भगवान को प्राप्त किया, इसको शिक्षा मिलती है। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में देखिए वैराग्य कितनी शिक्षा है, कैसे जीवन जीना है। इस जो क्रम अभी चल रहे श्रीमद् भागवतम के 28वें अध्याय, 28वें अध्याय में राजा पुरंजन की स्त्री जोनि प्राप्त हुई, क्योंकि स्त्री का चिंतन करते कर, जिसका चिंतन करे वही रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, आप ऐसे जैसे सोचोगे ऐसे बन जाओगे, जैसे आपका चिंतन होगा ऐसे आपका बनना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर सारा जीवन भर मतलब संसार में रहेंगे और स्त्री का चिंतन होता रहे तो आपका सदगति नहीं होगा, नरक गति हो जाएगी। इसलिए खूब भजन करना चाहिए, जैसे चिंतन हट जाए। हाँ वैराग्य मतलब उससे आसक्ति मेरा बिल्कुल नष्ट हो जाए। हाँ किंतु पुरंजन क्या किया, जीवन भर स्त्री के साथ रहे और उनके जैसे खाती थी, जैसे पीती थी, ऐसे उनके अनुरूप चलती थी, चलते थे पुरंजन। तो पुरंजन का अंतिम जीवन उसका स्त्री शरीर की प्राप्ति हुई। यहाँ एक चीज देखने का है, जिसका जीवन नष्ट मतलब मौत हो जाते उसका फिर पुनः शरीर प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। पुरंजन का शरीर छोटा और क्या शरीर प्राप्त हुआ, पुरंजन शरीर स्त्री शरीर की प्राप्ति हुई। तो जब स्त्री शरीर की प्राप्ति कहा न, विदर्भ राज के कन्या के रूप से, विदर्भ नंदिनी के रूप से उनका जन्म हुआ। तो विदर्भ राज ने सोचा इसको अच्छा घर में विवाह करना है। तो उस समय मलहद राजा सभी वीरों को जीत करके आ रहे थे, तो उसके साथ विदर्भ नंदिनी का विवाह करा दिया। किसके साथ, मलयध्वज के साथ। तो मलयध्वज के एक पुत्री हुई और 7 बेटा हुआ, एक पुत्री और 7 बेटा। 7 बेटा को द्रविड़ देश का अधिपति बना दिया, मतलब 7 द्वीपों का अधिपति बना दिया, राजा बना दिया। और बेटी की बड़ी तपस्वी थी, व्रतशिला थी, उसको एक अगस्त ऋषि के साथ उसका शादी करा दिया। तो अगस्त ऋषि शादी करा दिया उससे, दृढ़च्युत पुत्र हुए पहले, उसके बाद दृढ़च्युत का पुत्र हुए इद्धवाह पुत्र हुए। फिर राजा मलयध्वज ने माने संन्यास से वैराग्य लेकर चले गए। हाँ कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। ये कहाँ गए देखो, यहाँ लिख रहे मलयध्वज तीनों नदी में स्नान किया और कैसे जीवन जीते थे, क्या खाते पीते थे, इसका चर्चा आज चल रहे है। और उनकी पत्नी जो थी वैदर्भी नंदिनी, तो वो भी उनके अनुसरण किया। किसका, मलयध्वज का। तो मलयध्वज का जीवन ही देखिए कितना विरक्त का जीवन, गृहस्थ होते हुए भी इतना भोग संपत्ति, जितने भी राजा हुए श्रीमद् भागवत में जितना चरित्र आया, सभी ने आखिरी समय सब कुछ छोड़ छाड़ कर पूरा वैराग्य का जीवन ले लिया, वन में जाकर भजन किया। हाँ इसी प्रकार इसे शिक्षा लेनी चाहिए हम लोग को कि हम लोग को वैराग्य के जीवन जीना है। वृंदावन धाम ये प्रेम भूमि है, ये प्रेम सहज में प्राप्त हो जाएगा अगर थोड़ा सा जीवन में वैराग्य आ जाए। हाँ वैराग्य मतलब प्रभुपाद जी लिखते थोड़ा संभोग और थोड़ा सा आहार को कंट्रोल करना है, और आहार कंट्रोल हो जाए तो संभोग कंट्रोल हो जाएगा। आहार पर नियंत्रण आ जाए। जीवा भागवत में आया, रसम जीत स सर्वम जीत, जो जीवा को जीत लिया वो सब कुछ जीत लिया। किसी ने सभी इंद्रियों को जीता, जीवा को जीता नहीं तो किसी इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं किया। यदि जिन्होंने जीवा को प्राप्त जय कर लिया उस सारी इंद्रिया को, सारी इंद्रिया को जीत लिया। तो इसलिए जीवा पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसको क्या क्या देना है। इसको एक जैसे शरीर को ऐसे चलना है जैसे एक नौकर है, इसको हमेशा ही हम ज़्यादा प्यार करेंगे तो ये कुछ इससे काम लेना है। कहने का मतलब ये है, इसे थोड़ा मोड़ा देकर इसे हरिनाम करना है, अधिक से अधिक प्रभु का नाम, सत वस्तु का चिंतन मनन कीर्तन कराना चाहिए। इस शरीर के एक नौकर की तरफ देखना चाहिए। आज जब तक इसको अच्छी तरह सजाएंगे, अच्छा से खिलाएंगे पिलाएंगे, ये भजन नहीं करेगा, इस संसार के विषय रस का चिंतन करेगा, आपका भजन में बाधा डालेगा। आप रात को अधिक भजन भोजन करके देखिए, आप सुबह अगर भले 12-1 बजे जाग जाए आपका सिर दर्द करेगा, आपको भजन में बैठने ही नहीं देंगे। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिससे भजन नष्ट हो रहा है, जिससे भजन करने नहीं दे रहे हैं, उससे सावधान हो जाना चाहिए। भोजन से अगर भजन बिगड़े तो भोजन को कम करना चाहिए, क्योंकि समय कम है। समय को व्यर्थ जाने देना भारी मूर्खा में है। समय को बचाना, प्रभुपाद जी लिखते जो संभोग जो आहार से बच जाते उसको समय बचेगा। समय बचने से वो क्या करेगा, वो आध्यात्मिक जीवन में लगाएगा, आध्यात्मिक कार्य करेगा। तो कहने का उद्देश्य देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्याम सुंदरी श्री गौर सुंदर के रूप में आए हैं। एकमात्र पुत्र गौर सुंदर अपने पत्नी विष्णु प्रिया को छोड़कर, एक जिन्होंने अभी तक मतलब समाज किसी को देखा भी नहीं, मतलब जो चौकाट बोलते ना, जो दरवाजा है उसको भी अभी डींगा नहीं, हाँ, और अपनी वृद्धा माँ को छोड़कर संन्यास लेने के लिए चले गए। वो तो साक्षात श्री कृष्ण, उसको संन्यास क्या जरूरत था। किंतु जगत को शिक्षा देने के लिए जब महाप्रभु को सुना, माँ ने सुना कि बेटा संन्यास लेने जा रहे हैं, तो माँ खुद आए महाप्रभु के पास, निमाई के पास। निमाई, मैं जो जो सुन रही क्या सत्य है। तो निमाई ने पूछे, माँ क्या सुने आप। बोले, बेटा मैंने सुना कि आप संन्यास ले रहे हैं। तो क्योंकि विश्वंभर चले गए, विश्वंभर के पिता भी शरीर पूरा हो गया, एकमात्र घर में देखभाल करने वाला एकमात्र निमाई है, और कोई है सहारा है नहीं। माँ ने पूछा, बेटा आप सब छोड़ छाड़ कर संन्यास ले रहे। तो महाप्रभु ने कहा कि माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लेंगे। तो माँ ने आज्ञा देंगे, किंतु कहने का उद्देश्य ये है, महाप्रभु वैराग्य शिक्षा देने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए वैराग्य, भक्ति में वैराग्य की जरूरत है। बिना वैराग्य से भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। देखिए, सामान्य वृद्धा माँ जिसका कोई सहारा नहीं, एकमात्र पत्नी विष्णुप्रिया जिसकी अवस्था 16 साल की, इस सब छोड़ छाड़ के, पिता माता छोड़ना आसान है, पत्नी छोड़ना आसान नहीं है, किंतु सब छोड़ छाड़ के महाप्रभु शिक्षा दे रहे जगत के कि सब किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति करना है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि वैराग्य का शिक्षा जीवन में लाना चाहिए। जीवन में वैराग्य नहीं है, इंद्रिय की वृत्ति विषय में जा रहे मतलब उसका जीवन खोखला है। इंद्रिय की वृत्ति जो है विषय की ओर जा रहे, इस उसका जीवन मतलब शून्य है, आध्यात्मिक जीवन से शून्य है, कुछ नहीं मिलेगा। अगर उस इंद्रिय की वृत्ति, अगर वृत्ति में इंद्रियों में अगर प्रभु का प्रभु नृत्य करे तो जो वृत्ति है उससे विष निकल जाएगा। अच्छा समझे, जैसे हमारे इंद्रिय की वृत्ति है, जैसे आँख की वृत्ति है क्या, देखना, विषय को जा रहे नहीं, वहां से लौटाना और प्रभु के रूप में लगाना। अगर विषय में मतलब विषय में चला जाए वो साधक लूट जाएगा, वो साधक कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हमेशा वृत्ति को बचा के रखना चाहिए। इंद्रिय की जो वृत्ति है, जीभा की जो वृत्ति है, जो कान की जो वृत्ति है, इसको बचा के रखना चाहिए। हमेशा भगवत सेवा में लगाना चाहिए, और भगवत नाम रूप गुण लीला में लगाने से क्या होगा, जो इंद्रिय जो विष है, इंद्रिय में विष आहरण करता है, हमेशा ही विषय से विष ग्रहण करता है। इंद्रिय जो है विषय से क्या लेते हैं, विष ग्रहण करते हैं। विषय शब्द का अर्थ है विशेषण स्नातीत विषय, जो बांधता है संसार में बांध देता है उसको विषय कहते हैं। इसलिए हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि मैं सात वस्तु का चिंतन करें, घर गृहस्थी संसारी कोई सब ठीक है। घर महाप्रभु बोलते गृहे थाको बने थाको सदा कृष्ण बोले ठाको, निरंतर जीवा में कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान होना चाहिए, जीवा में कीर्तन होना चाहिए। भले घर के जो भी झाड़ू लगाए हो, जो भी पोछा लोता होता, जो भी कुछ काम करे प्रभु का निरंतर, भले कुछ काम करना है तो टेप जो है प्रभुपाद जी का टेप लगा देना चाहिए, सुनना चाहिए। तो ये वैराग्य की शिक्षा महाप्रभु ने दिखाया अपने जीवन में। सनातन गोस्वामी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलने के लिए आए थे सनातन गोस्वामी, एक चादर था बहुत सुंदर, कंबल था, भेंट कंबल था जो अपने भगनी पति ने दिया था। महाप्रभु का दृष्टि उस पर गया, सब कुछ देखा, किंतु जब देखा कि महाप्रभु प्रसन्न नहीं है तो उसको फेंक दिया। हाँ, महाप्रभु प्रिय वैराग्य, अगर जिसके अंदर वैराग्य नहीं है तो महाप्रभु कभी प्यारे नहीं बनेंगे, महाप्रभु कभी उसको तरफ देखेगा भी नहीं। हाँ, इसलिए कम से कम वस्तु से जीवन जीने का आदत बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो प्रकृति आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, और भक्त प्रेम प्राप्ति में बाधा आ जाएगा। तो इसीलिए कम से कम जीने से, इसलिए प्रभुपाद इसलिए लिखते ये दोनों चीज़ से बचना। एक बार मैंने एक संत से पूछा था कि इतने साल तक हो गया अभी तक कुछ भक्ति में अग्रसर नहीं हो पाया, क्या करें। तो बाबा ने कहा था, एक संत ने कहा था कि भोग और संग्रह से बच जाए जीवन, अगर भोग और संग्रह से जीवन को बचा ले तो आपको सब प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हमें से ध्यान रखना चाहिए कि अपना भजन, जिसका भोजन सरस है उसका भजन नीरस है, वो नीरस भजन, उसका भजन कोई बल नहीं। हाँ, और जिसका भजन नीरस है उसका भोजन, भोजन नीरस भजन सरस। हाँ, भोजन का कम करना है, नहीं एकदम बिल्कुल ना खाने पीने से ही भजन नहीं हो पाएगा। इतना ही सूखा रूखा ले जैसे काम चल जाए, बॉयल सब्जी बॉयल कुछ हल्का फुल्का ले, जैसे कम से कम, कहने का उद्देश्य नहीं कि पूरा पूरी दवा, जैसे हमारा प्रधानमंत्री ने पूरा दवा का एकदम अच्छा काम किया। हाँ, इस प्रकार से जीवन का दवा ना है, जैसे पूरा छोड़ने से, वृत्ति को छोड़ने से फिर समेटने में कष्ट होता है, हम वृत्ति को छोड़ने से फिर उसको समेटने में भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करना है, नित्य समय जितना समय मिले भजन में लगाना चाहिए। तो आज नरहरि सरकार के तिरुभाव तिथि है। नरहरि सरकार श्री चैतन्य महालीला में नरहरि सरकार हुए, वृंदावन लीला में, ब्रज लीला में राधारणी के प्राण सुखी मधुमती थे, प्राण सुखी के मधुमती। तो मधुमती नरहरि सरकार का जन्म हुआ श्रीखंड में। कहाँ जन्म हुआ? श्रीखंड में, जो वर्धमान के वर्धमान में है श्रीखंड। तो इनका पिता का नाम था नारायण और माँ था गोई, गोई माँ का नाम था गोई, जो मुरारी सेन की कन्या थी। और इनका जन्म हुआ संवत 1536-37 में, 35-36 में इनका जन्म हुआ। तो इनका बड़े भाई का नाम था मुकुंद, मुकुंद का एक लड़का का नाम था रघुनंदन। हाँ, ये सब ठाकुर वंश के नाम से सब लोग जानते थे, नरहरि सरकार ठाकुर, मुकुंद ठाकुर। हाँ, इनका एक भाई और था माधव, क्या एक नाम था माधव, माधव नरहरि और मुकुंद, तीनों भाई थे। तो तीनों भाई जब मतलब पिता का देहावसान हो गया, पिता अंतर्धान हो गया, तो मुकुंद सबसे बड़े हैं तो गृह चिकित्सक थे, गृह में काम कर मतलब गृह चिकित्सक करते थे। और ये नरहरि सरकार को नवद्वीप में एक संस्कृत टोल में उसको एडमिट करा दिया, भर्ती करा दिया। तो वहाँ वो साहित्य में बहुत अच्छा, उनका मेधा थी, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करके भक्ति रस में भी ज्ञाता, बहुत अच्छा विद्वान बने और भक्ति रस का भी ज्ञाता बने। उनके साथ साक्षात सबसे पहले साक्षात हुआ गदाधर पंडित के साथ। तो गदाधर पंडित जैसे महाप्रभु के प्यारे थे, ऐसे कुछ दिनों में नरहरि सरकार महाप्रभु अत्यंत प्रिय बन गए, महाप्रभु के प्रिय बन गए, उनका अंतरंग सेवक बन गए महाप्रभु के। तो नरहरि सरकार माने महाप्रभु से मिलन से पहले बहुत बांग्ला पद पद्यावली रचना किए और बहुत संस्कृत मतलब भजन संस्कृत का कुछ भजन भी लिखे नरहरि सरकार ठाकुर ने। नरहरि सरकार जैसे नवद्वीप में उस समय श्रीवास अंगन में संकीर्तन रासस्थली होता था, माने भक्त और भगवान का आवाज निसंकोच मिलन मिलन होता था। जिस प्रकार श्री चैतन्य ब्रजलीला में भगवान गोपियों के साथ प्रेम आस्वादन करते थे, इसी प्रकार वहाँ भी श्रीवास अंगन में भी संकीर्तन जहाँ रासस्थली थी, तो वहाँ में भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने विभिन्न भावों के भक्तों के साथ रस आस्वादन करते थे और भक्त लोग उस आस्वादन से विभोर हो जाते थे, भक्तों विभोर, भगवान भी भक्तों से आनंद लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, नरहरि सरकार महाप्रभु के मधुर भक्त थे, मधुर उपासक थे, मधुर रस के उपासक थे और मधुर रस के उपासक और प्रेमी भक्त थे। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु श्रीखंड में आए, कहाँ आए, श्रीखंड में आए। श्रीखंड में आकर कहे मुझे मधुपान कराओ, मुझे मधुपान कराओ। तो मधुपान का अर्थ ये है कि मुझे मिठास मतलब शरबत पान कराओ, मिठास से जो युक्त शरबत है वो शरबत पान कराओ कराए। तो तुरंत नरहरि सरकार बाहर आए और अपने लोटा लेकर सामने पुष्करिणी थी, पुष्करिणी में गए और आपने स्पर्श किया, स्पर्श करके और कमंडलों में मतलब लोटा में पानी लाकर नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को पानी पिलाया। पानी पिलाते महाप्रभु बहुत तृप्त हुए, बहुत खुश हुए, बहुत मतलब बहुत आनंद उनको प्राप्त हुआ। तो आज भी वो पुष्करिणी मधु पुष्करिणी नाम से विख्यात है, श्रीखंड में जो पुष्करिणी है वो पुष्करिणी आज भी मधु पुष्करिणी नाम से विख्यात है। तो नरहरि सरकार जैसे ब्रजलीला में चामर व्यंजन करते थे, नरहरि आदि करी चामर ढलाए, हाँ ये है मधुरस के उपासक, संजय मुकुंद आदि वासु घोष आदि गाए। तो इस प्रकार से नरहरि सरकार महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। अब महाप्रभु कभी कभी गदाधर का हाथ पकड़ते और नरहरि के कांधे में भुजा डालकर तीनों में कोटि देश के झुकाकर बहुत सुंदर नृत्य करते थे, तो जैसे लगता था कि एकदम माने बहुत सुंदर एक दर्शन होता था सबको। नरहरि के बिल्कुल हाथ से स्पर्श करके खूब रसास्वादन करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। और जिस प्रकार ब्रजलीला में रासलीला जिस प्रकार हुआ, इस प्रकार वो रास भवन है, श्रीवास अंगन जो है वो रास स्थली है, तो महाप्रभु उस प्रकार वहाँ आनंद लेते थे भक्तों से। तो फिर 1540 ईस्वी है, संवत 1535-36 में उनका जन्म हुआ, ईस्वी 1540 एकादशी तिथि में उनका अंतर्धान हो गया। और अंतर्धान होते ही बहुत बड़े बड़े वैष्णव लोग आए वहाँ मिलने के लिए, दर्शन के लिए, और वहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। वो महोत्सव में अध्यक्षता किए कौन, श्रीनिवास आचार्य, वहाँ वीरभद्र प्रभु भी आए, नित्यानंद प्रभु के शिष्य वीरभद्र प्रभु भी उस महोत्सव में योगदान किए। और फिर बहुत बड़ा उत्सव हुआ, भंडारा हुआ, बहुत संतों को प्रसाद पाया, फिर वहाँ नृत्य करने लगे। एक बहुत बड़ा आश्चर्य घटना घटा घटी क्या घटनी क्या घटना ना, वहाँ एक अंधा, एकदम जन्म से ही अंधा, जब वीरभद्र प्रभु ने नृत्य करने लगे भक्तों के साथ महोत्सव में, नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे, तो हरिध्वनि के गूंज उठने लगी, तो उस समय वो अंधा मन ही मन सोचने लगे कि अगर हमारा नृत्य नयनों अगर नयन होता तो मैं भी इस दृश्य को देख सकते थे, किंतु कैसी विधाता का विडम्बना, आज मैं इस आनंद से वंचित रह गया। तो वीरभद्र प्रभु ने हृदय को जानकर उस पर दृष्टि किया, और दृष्टि करते ही उनका नयन खुल गया। नयन खुलते ही वीरभद्र प्रभु को जयध्वनि दिया, और नरहरि सरकार ठाकुर को भी जयध्वनि किया, जय वीरभद्र प्रभु की, जय नरहरि सरकार ठाकुर की, इस प्रकार से जयध्वनि किया। आज हम लोग देख सकते हैं कि नरहरि सरकार कितना महाप्रभु प्रिय थे, महाप्रभु कितना अंतरंग पार्षद बने। तो इसलिए इस तिथि में एक विशेष, इसलिए जहाँ विरह तिथि उत्सव है वहाँ कम से कम जाना चाहिए, कुछ उत्सव में कुछ फल मिठाई जो भी हाथ में है देने से संतों का आशीर्वाद मिलता है, कुछ देने से हमेशा कुछ देने का आदत बनाना, कुछ लेने का आदत कभी नहीं बनाना, इसमें घाटा पड़ जाएंगे। कुछ देने देने के भाव मतलब कुछ मुझसे ले ले, कुछ लेने की प्रतीक्षा ना रहे, इसमें प्रेम प्राप्ति में बहुत सुविधा है, ऐसे हृदय में एक त्याग की भावना आ जाएगा। हाँ, तो इसीलिए निरंतर प्रभु का नाम जैसे चलता है, एक श्लोक भी है, इस श्लोक हम लोग पाठ भी कर सकते हैं, उनका प्रणाम मंत्र है नरहरि सरकार का, पूरा मधुपति बोलिए, पूरा मधुमति प्राण सखी वृंदावने स्थिता। सबसे मैंने ब्रज लीला में मधुमति प्राण सखी, राधा जी की प्राण सखी थे मधुमति वृंदावन लीला में, और अधुना आज अधुना नरहर जख सरकार प्रभो प्रिय, आज वही नरहरि मधुमति, आज नरहरि के नाम से महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हो गए। जो मधुमति राधारानी के सबसे प्राण सखी प्यारे सखी थी, वो आज वही प्राण सखी मधुमति नरहरि के रूप से महाप्रभु की लीला में प्रवेश किए, महाप्रभु लीला में आए और महाप्रभु के बहुत प्रिय बन गए। तो इस प्रकार इस तिथि में तो आज श्लोक से ये शिक्षा लेनी है कि जीवन में वैराग्य का लाना है, सीधी सी बात। हाँ, सबसे पहले वैराग्य किस में आना चाहिए, आहार, कभी आहार में कभी झुकना नहीं, कहीं पे भले भूखे 2 घंटा रह जाए पानी पीकर, कभी वहाँ से मतलब हमेशा अपने जीभा का कंट्रोल रखना। धीर किसको कहते हैं, धीर शब्द का अर्थ जानते हैं, संस्कृत में धीर शब्द का अर्थ है धी इरयति पेरयति धीर, जो अपना बुद्धि को अपना मन बुद्धि की तरह चालित है, सभी जीव मन और बुद्धि जैसे कंट्रोल करते ऐसे हम लोग चलते। जब ऐसे चेतना आ जाएगी कि मैं मन बुद्धि को कंट्रोल करने के समर्थ आ जाएगा तो वो धीर बन जाएगा, मैं मन के वशीभूत नहीं हूँ, मैं बुद्धि के द्वारा चालित नहीं हूँ, मैं जो आत्मा जो मन बुद्धि जिसकी जो व्यक्ति मन और बुद्धि पर शासन करते हैं वो है धीर। जैसे यहाँ बहुत कुछ रखा है, मन कहेंगे ये ले लो ये ले लो, ये बहुत सोना पड़ा गिरा हुआ है ये ले लो अपने काम में आएगा, नहीं, किसी की चीज़ में नहीं लगाना हाथ, हाँ, किसी की वस्तु स्वीकार नहीं करना, मन पर बुद्धि पर हमेशा शासन होना चाहिए। हाँ, तो इसमें आत्मबल बढ़ेगा, जितना आत्मबल बढ़ेगा उतना अपना शरीर में, भले गरीब है, भले घर में 1 किलो आटा नहीं है, किंतु आत्मबल रहे तो उस जीवन में भगवत प्राप्ति कर लेंगे बहुत आसानी से। और बहुत दूसरे से धन को बटर करके एकत्रित किया वो भगवत प्राप्ति में बाधा हो सकती है, क्योंकि उसमें धीर से वो धीर नहीं है। हमारा कहने का उद्देश्य ये है जीवन में धीर बनना है। धीर मतलब जो बुद्धि और मन पर कंट्रोल करने में समर्थ है। हाँ, बुद्धि और मन पर कंट्रोल करने से उसमें आत्मबल बढ़ेगा, तपस्या का बल बढ़ेगा। और तपस्या का बल हमेशा ध्यान में, तपो दिव्यम पुत्र का जन सत्यम शुद्धि जस्मत ब्रह्मसौखतु अनंतम। हाँ, ऋषभदेव अपने पुत्र से कहते कि हे पुत्रगण तप करो। तप मतलब मुझे नहीं चाहिए, मुझे संसार किसी वस्तु की लालसा नहीं, कम से ऐसे एक दृढ़ बल होना चाहिए। हाँ, आज कुछ मिल भी जाए उसको जिसकी आवश्यकता है उसको कुछ अंश दे देना चाहिए, अपने जितना आवश्यकता है लेकर उसको दे देना चाहिए। तो इसमें आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बिना जीवन शून्य है, खोखला है। हाँ, इसलिए देने की आदत बनाए, कुछ लेने की आदत ना बनावे। हाँ, तो वैराग्य जीवन बहुत महाप्रभु ने शिक्षा दिया। हाँ, संक्षेप में यही कहना है कि वैराग्य जीवन में कि जैसे तैसे हो, संत की कृपा से, संत के संग से रोज सत्संग होनी चाहिए। सत्संग करने से ये वैराग्य अपना आप आ जाएगा। और नित्य नियमित रूप से अधिक सोलोमाला से नहीं, जितना हो सके। एक संत सुना रहे थे, कोई अगर 12 घंटा नाम जप करे वो तृतीय श्रेणी के भक्त है। 12 घंटा नाम जप करे माने 12 घंटा अगर भगवान चिंतन करे तो है वो है तृतीय श्रेणी के भक्त। जो 16 घंटा नाम जप करे वो द्वितीय श्रेणी के भक्त। आज जो 16 घंटा से ऊपर करे वो है फर्स्ट क्लास के भक्त। तो इसीलिए तो एखन जप मतलब शुरू जप ही करना, सेवा सेवा की जप के अंदर नहीं है। कम से कम उन्होंने तो इतना स्ट्रेस दिया कि जप ही करना है। हाँ, बोले जप ही मुख्य है। हाँ, तो कम से कम 16 घंटा नाम जप सेवा में कम से कम लगाना चाहिए। कम से कम जीवन अपना खान पान, नहाना धोना, कपड़ा धोना, कम से कम जीवन समय में गुजारा करनी चाहिए। तो इससे धीरे धीरे एक विषय आकार जो है चित्तवृत्ति वो सत आकार बन जाएगा। वो धीरे से मन भगवान में लगेगा ही लगेगा, वो संसार की तरफ झुकेगा नहीं कभी। तो यही पे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त करता हूँ। और आप लोग आज इसी दिन में एक हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं श्री नरहरि ठाकुर सरकार से, जो श्रीमन महाप्रभु अत्यंत प्रिय हुए, कि हे प्रभु आप कृपा करके अपना कृपा कोना हमारे ऊपर संचार करें, जैसे महाप्रभु के मार्ग में रहे और उनका जो आदर्श के अनुसार हम चल सके। श्रील नरहरि सरकार ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। बहुत सुंदर प्रश्न है, किसी का अंतकरण शुद्ध है कि नहीं है तो कैसे पहचान में आएगा। देखिए, अंतकरण की शुद्धि के बारे में जैसे हम कैसे जानेंगे इसका अंदर अंतकरण शुद्धि है कि नहीं। आपका आप में जब आत्मबल आ जाएगा, आप में जब आप आत्मशक्ति आ जाएगा, आप उसका एक आप अपने में जांच कर लेंगे कि इसमें क्या है। आपने में किसी को देखना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, आपने में देखना है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे अंदर बहुत अवगुण है। हाँ, भाले प्रेमी भक्त वो अवगुण देखते नहीं, मतलब दूसरे में कभी अवगुण देखते नहीं, जैसे हो हमसे श्रेष्ठ है। सारा दुनिया में जितने हैं सब भक्त हैं, मैं एकमात्र भक्त हूँ। ये हमेशा ये अंतकरण शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ हम नहीं देखेंगे। हम हमारी दृष्टि में शुद्ध है। वो भाले चोर है, डाकू है, एकदम बिल्कुल पापाचारी माने जघन्य काम करने वाले हैं, किंतु हमारी दृष्टि में वो ठीक है। भले उससे संग ना करे किंतु हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। दृष्टि को बदलना है, सृष्टि को बदलना नहीं। ठीक है, हम सब में अच्छा देखें, बुरा ना देखें।